Olmuş mu?
Olmuş mu?
प्राचीन काल में एक चित्रकार थे, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार। उसे एक बार इच्छा हुई किसी एक ऐसे व्यक्ति की चित्र बनाऊं कि जिसमें ईश्वर की झलक दिखती है, जो सर्व गुणों से संपन्न है, जिसमें संतुष्टता है, प्रेम है, जो अति साधारण हो, साधारण होते हुए भी वो अति महान हो। तो वो ऐसे एक व्यक्ति की तलाश में जाता है। कई साल घूमने के बाद उसे एक किसान मिलता है और वो देखता है कि इस किसान में वो सब कुछ है जो उसने सोचा था। तो उस किसान की वो पेंटिंग निकालता है, उसका चित्र बनाता है और वो चित्र काफी प्रसिद्ध हो जाता है। गांव गांव में सब जगह वो बिकता है। कई साल गुजर जाते हैं, कई वर्ष गुजर जाते हैं। चित्रकार जब खुद भी बूढ़ा होने लगता है 20-30 साल के बाद, तो उसको अब ऐसी इच्छा होती है कि ऐसा एक चित्र बनाऊं। उस समय मैंने एक चित्र बनाया था जिसमें कि ईश्वर की झलक दिखती थी, ऐसा चित्र अब बनाऊं कि जिसमें संपूर्ण कुरूपता है। एक ऐसा चित्र बनाऊं कि जिसमें सारे ही अवगुण दिखते हैं, अवगुण। एक ऐसा चित्र बनाऊं जो कि कुरूपता की प्रतिमा हो। तो वो ढूंढने निकलता है ऐसे व्यक्ति को कि जिसमें जिसके चेहरे पर घृणा हो, नफरत हो, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध, सब अपराध किए हो। तो कई वर्ष ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उसे ऐसा एक व्यक्ति मिलता है जेल में, जिसने कई खून किए होते, कई अपराध किए होते। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढता है। इतने अपराध होते हैं कि अभी उसको मृत्यु की मृत्युदंड दिया जा चुका होता है और कुछ समय के बाद उसे उसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढता है और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बाद उसे लगता है कि यही वो व्यक्ति है कि जिसमें मानव जीवन का संपूर्ण जो भी कुरूपता है वो सब कुछ है उसके जीवन में। तो उसकी वो एक स्केच, एक प्रतिमा बन गई, पेंटिंग करता है। और जब उसे मिलने जाता है तो जो पहली एक पेंटिंग है वो भी साथ में लेके जाता है। तो दोनों पेंटिंग लेके जाता है। तो जो ये अपराधी व्यक्ति है, जब वो दोनों पेंटिंग को देखता है तो एकदम रोने लगता है। क्यों? वही था, एक समय वही था
किसान,
वही किसान जो सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें ईश्वर की झलक दिखती थी, जिसमें सर्वगुण था, जिसके जीवन में संतुष्टता था। समय अनुसार काल चक्र में बढ़ते बढ़ते अपराध करने लगा, पाप करने लगा। अब पाप की मूर्तिमंत प्रतिमा बन गया है। तो अपना ही चित्र देखकर उसे रोना आता है। और अभी इस समय कि उसे मृत्यु दंड दे चुका मिला हुआ है, उसकी मृत्यु है। उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है कि वो वापस अपने उस रूप को प्राप्त कर सके। पश्चाताप भी उसके पास है बस। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। जो संसार में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, जो सर्व महान आत्माएं थी, वहां 20-30 साल, यहाँ 5,000 साल में एकदम नीचे उतर गई। परंतु इनके पास अवसर अभी भी है। अभी मृत्यु दंड मिला नहीं, इनके पास अभी भी अवसर है, वो उसी पद को प्राप्त कर सकती है जो संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ वंश है, जो संसार के सर्व प्राचीन वंश है, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ घराने हैं, उस घराने में पुनः पहुंच सकते हैं। परंतु उसके लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है, कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ शर्त है। उसी क्वालिफिकेशन की चर्चा आज की मुरली में है। उस वंश में कौन जा सकते है? जो संसार के सर्व प्राचीन वंश है, उससे प्राचीन और कोई वंश नहीं है। कौन से वंश है? वो है सूर्य वंश और वो है चंद्र वंश। ग्रीक, मिश्र, साइरिया, ऐसे कुछ देश है कि ऐसा माना जाता है कि वहां के जो वंश है उनके देश में ये वृत्तांत है कि वो चंद्र वंश की ही शाखा है जो सर्व प्राचीन है। मिश्र की सभ्यता बहुत प्राचीन है, पर वहां पर भी ये मान्यता है कि वो चंद्र वंश की शाखा है। भारत में मौर्य वंश, द्वापर से जो भी वंश आए वो सब किसकी शाखा है? चंद्र वंश की शाखा है। तो भक्ति में भी गायन है सूर्य वंश और चंद्र वंश का। चंद्र वंश में कौन आया और सूर्य वंश में कौन आया भक्ति में? सूर्य वंश में कौन आया भक्ति में? श्री राम, इश्वाकु, दिलीप, सगर, भगीरथ, दशरथ, राम, ये सारे सूर्य वंश। इश्वाकु उनका पूर्वज, अयोध्या उनकी राजधानी, कौशल उनका राज्य, ये सारा है सूर्य वंश भक्ति के हिसाब से। और चंद्र वंश श्री कृष्ण चंद्र वंश, चंद्र का विवाह दिखाया है 27 पुत्रियों के साथ दक्ष प्रजापति की। लक्ष्मी नारायण यहाँ नहीं है, वो इस वंश में ही नहीं है। ये दोनों ही वंश भक्ति के हिसाब से क्षत्रिय वंश है, दोनों ही क्षत्रिय वंश है, दोनों ही त्रेता में है, त्रेता या एक द्वापर में। चंद्र वंश नहीं, राम चंद्र वंश नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, वो तो सूर्य वंश है। राम
राम को चंद्रवंशी
राम सूर्य वंश, इश्वाकु, कौशल राज्य, अयोध्या जो राजधानी, श्री कृष्ण है चंद्रवंशी, सोला कला है। तो आज क्या कहा बाबा ने? इन दो वंश की कहानी बताई। तो कहाँ है हम? जीवन भाई बाउंड्री पे है, कहाँ है?
बॉर्डर पे,
बॉर्डर पे है, बाउंड्री पे है कि बाउंड्री पे हाथ लगाते ही सीधा नीचे पिसल जाते हो? कहाँ होते? कौन सी सीमा में? क्या लगता है मुरली से कौन सा राज्य मिलेगा? छोटा मोटा उड़िया, मानपुर, तलेटी का छोटा मोटा राजा, या त्रेता के अंत में कुमारवाड़ा छोटा मोटा कुछ? बाबा पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनोगे? लक्ष्मी नारायण तो दूर, सूर्य वंश में आना भी थोड़ा।
उस हिसाब से देखो तो फिर तो बहुत लंबा सफर है अभी,
क्योंकि हर चीज में सदा है सूर्य वंश में आने के लिए। साकार मूल्यों में तो बहुत आसान है, ज्ञान योग धारणा से जो याद में है वो स्वर्ग में आ जाएंगे। जिन्होंने ज्ञान एक बार सुना वो स्वर्ग में आ जाएंगे। सर्ग स्वेमी सर्ग, जो पढ़ाई पर अटेंशन है।
सवाल ये है कि फिर चंद्रवंशी कौन है?
बढ़ने की बात है ना, आगे भगवान ने बाउंड्री की बात की है, तो कहाँ तक पहुँचे हो?
9 लाख कौन है?
चेकिंग भी है ना, नहीं पहुंचोगे तो चंद्रवंश में तो वही कहाँ गया?
तो बाबा ने क्वालिफिकेशन तो बता दिए, ये चाहिए तो सूर्य वंश में आ सकते। अगर ये नहीं है तो
तो काली बेसन तो है, काली बादल आते जाते हैं बादल की बात है
परंतु ये अवसर हमको मिला है, जैसे उस अपराधी को कोई अवसर नहीं था, तो हमारे पास एक अवसर है पुनः उस देव पद को प्राप्त करने। क्या कहा बाबा ने आज, क्या देख रहे, क्या रो रहे हैं कर रहे बाप दादा, चढ़ती कला से संसार का। तो एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश, एक फर्स्ट डिवीजन, एक सेकंड डिवीजन, स्टेज और गति में क्या अंतर है वो देख रहे हैं। एक संकल्प और स्वरूप में समान, एक संकल्प और स्वरूप में अंतर 50, कभी 75, कभी 50। संकल्प महान परंतु स्वरूप में अंतर, एक सदा बीज रूप और एक फरिश्ता स्थिति में निरंतर स्थित, दूसरा बीज रूप तो छोड़ दो, बीज रूप नहीं है इधर। और सूर्यवंश सदा दो ही स्थिति में स्थित है, योग में है तो बीज रूप और कर्म में है तो फरिश्ता स्थिति, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म करते हुए कर्म पर स्पर्श न करे, कर्म का परिणाम भी स्पर्श न करे। कर्म योगी, कर्मातीत की परिभाषा बाबा ने कभी दी है दीदी से बात करते हुए कि कर्मातीत अर्थात कर्म भी स्पर्श न करे और कर्म का जो परिणाम है वो भी तुमको टच ना करे, ये है कर्मातीत की परिभाषा। तो एक तो बीज रूप स्थिति में स्थित है और दूसरा फरिश्ता स्थिति में स्थित है निरंतर, ये दो ही स्थिति है। ये दो स्थितियां हमेशा है तो समझ लेना सूर्यवंश, और ये नहीं है तो समझ लेना मतलब हमारी बरबर
नहीं होता।
तो चंद्रवंशी कभी फरिश्ता स्थिति में तो कभी युद्ध में,
माया से युद्ध करने में विजय,
विघ्न कौन से विघ्न, व्यर्थ संकल्प और समस्या, इससे लड़ते रहते हैं। तो कभी विजय होते कभी नहीं होते। योग में मेहनत का अनुभव है, हर चीज में मेहनत है, इधर मेहनत नहीं है, इधर मेहनत है। एक घंटे में 15 मिनट आधा घंटा सफलता का अनुभव करते हैं, कभी चढ़ती कला कभी उधरती कला, वो कलाओं के चक्कर में नहीं आते। आगे बाबा ने बोला ये कलाओं में आते, कभी ऊपर कभी नीचे। बाप के सर्व गुणों का अधूरा अनुभव होता है। बाप सुख का सागर है तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, कभी होता कभी नहीं होता, उनको सदा होता, उनको कभी कभी होता, 50-50। कभी याद की स्टेज तो कभी फरियाद की स्टेज, उधर निरंतर याद की स्टेज, कभी फरियाद की स्टेज में कोई कंप्लेंट नहीं है, बाबा से कोई कंप्लेंट ना किसी की कंप्लेंट, सब ठीक चल रहा है, जो हो रहा है सब
ठीक,
अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, निश्चय बुद्धि है, हर बात में कल्याण है, चाहे बीमारी आ जाए तो कल्याण, कोई मर जाए तो कल्याण, नुकसान हो जाए तो कल्याण, ज्ञान की वो बातें जो पहले नहीं आई थी पर ज्ञान में आने के बाद आई तो कल्याण, माया की हलचल तो कल्याण, दर्द में तड़प रहे हैं तो क्या गीत गाएंगे चिमन भाई, वाह रामा वाह, वाह व्याधि वाह, वाह रे मैं ऐसा दर्द,
वाह मेरी दर्द,
वाह मेरी दर्द, वाह रे हिसाब किताब
होता है बाबा आया है होती
है कि चिल्लाओगे हाय बाबा, तो प्रैक्टिकल और थियोरी में अंतर है मेहनत है, मेहनत के कारण थकते हैं, कभी चलते हैं तो कभी दौड़ते हैं दूसरों को देख कर, परंतु दौड़ नहीं पाते, शक्ति ही कम हो गई है, मेहनत इतनी ज्यादा है क्योंकि संघर्ष है, हर बात में संघर्ष है। संघर्ष है इसका मतलब, मेहनत है इसका मतलब, मोहब्बत कम है, बाप से प्यार थोड़ा कम है।
मेहनत है तो भगवान साकार में भी।
और सूर्यवंशियों का क्या क्या है अभी? सूर्यवंशियों का बाद में,
चंद्रवंशी
अभी, चंद्रवंशी चालू है
बीच
में। तो चंद्रवंशी की ये सब 12 चीजें हो जाएगी, वो सब कैसी है? कभी है कभी नहीं है, 50-50% है। और चंद्रवंशियों का क्या है? कभी स्थिति समाज, तो कभी व्यर्थ, कभी महान तो कभी साधारण, कभी महावीर और परिष्ठा तो कभी सहयोग दो, सहारा मांगते
लंगड़ाते
ऐसी स्थिति। कहाँ तक पहुंचे बाबा पूछ रहे? तो युग तो सूर्यवंश में हो या चंद्रवंश में हो या बाउंड्री तक हो, बाउंड्री को हाथ लगाया और पता नहीं ऐसा झटका लगता है कि नीचे सीधा वापस पहुंच नहीं पाते ऊपर, माया तो है नहीं वहां पर। कभी कभी बाउंड्री इतना दूर दिखती है, सीमा
उससे पुरुषार्थ से नहीं पहुंच सकते, तीव्र पुरुषार्थ,
तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्या
पैरेंट छोड़ के रखा आत्मा जाती है, देव बाद में आते समझ गए कभी,
जैसे ही आत्मा को लगता है कि पहुंच ही गया,
और गया। एक्चुअली करंट तब लगता है जब अर्थ मिलता है,
बोल और कर्म में निर्माण, बाबा ने कहा एक्चुअली। तो जैसे ही अहंकार आया कि स्थिति नीचे, कि मैंने सब विकार जीत लिए, अपने अपने अंदर झांकना है, कल बोला ना बाबा ने, अपने अंदर झांकना है, बाबा को सुना दो क्या क्या अवगुण है, क्या क्या कमियां है, क्या क्या खामियां है, तो बाप तुमको युक्ति बताएंगे, तो बाप तुमको उपाय बताएंगे, बाप तुमको करंट देंगे, दृष्टि देगी और करंट मिलेगा कि इससे कैसे छूटे। पर सर्जन को अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी, नहीं बताओगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, लाइलाज हो जाएगी,
कोई मरीज होते हैं ठीक से बीमारी बता नहीं पाते,
हाँ वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, एकदम सीरियस होते हैं, उनके साथ ही तो बता सकते हैं,
नहीं उसको उसका
वो एकदम
नहीं करना नहीं आता, कैसे बताऊं मैं,
अच्छा
एक्सप्लेन नहीं करता।
बाबा वैसे भी भाव को ही कैच करता है, क्या भावना है अंदर, बाबा तो शब्द जाते है, क्या जाता है बाप तक, बाबा इधर है, एक उर्दू में बात कर रहा है बाबा से, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक तमिल में बात कर रहा है, उड़िया में बात कर रहा है, बाबा तो कौन क्या जा रहा है, वो वाइब्रेशन प्रकंपन पहुंच रहे उस तक, भाषा थोड़ी पहुंचती है परम धाम में, भाषा पहुंचती है, कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, आत्म बाबा तक प्रकंपन पहुंचते और वही रिस्पॉन्स नीचे जाता है, उसको उसी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर उसी भाषा में उसको टच कराती है, जो जिस भाषा में उससे बात कर रहे हैं उसी भाषा में उसको टचिंग होगी और उसका हल उसको मिलेगा।
नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, बाबा अगर कोई तमिल में बाबा को बोल रहा है और बाबा हिंदी में उत्तर
तो कैसे होगा तो? बाबा के बच्चे तो असंख्य है, ये तो भारत की बात क्या, विश्व है,
पूरे
विश्व का पिता है, बेहद का बाप है,
बाबा ठीक से बोलेगा और उसको गाली लगेगी, दूसरी भाषा में
10,000
यहाँ भाषाओं का तो कोई, बाबा के भगवान के घर में भाषाओं का क्या, यहाँ तो भावना है, श्रेष्ठ है, प्रधान है। तो सूर्यवंशियों की क्या क्या निशानी है फिर? सबसे पहली निशानी कौन सी है संजय भाई सूर्यवंशियों की? दूसरा बताओ, पहली निशानी कौन सी है? सदा बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लगनी। सदा बाप के साथ, सदा बाप के साथ अर्थात सदा वो मेरे साथ है, उसके साथ का अनुभव। और दूसरा सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लगनी। सर्व संबंध एक के साथ, केवल बाप के संबंध से नहीं, जिन्होंने खुद को बाप का बनाया। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात थ्री, जिन्होंने चौथा चौथी पार्टी से मुलाकात, क्या बोला उसने, जिन्होंने बाप को सर्व संबंधों से, केवल बाप के संबंध से नहीं, सर्व संबंधों से, उनकी कौन सी विशेषता होगी? वो निर्मोही है। अमृत वेला सर्व संबंधों का अनुभव बाप से करेंगे, बाप से सर्व संबंधों के अनुभव का सुख लेंगे और दूसरी आत्माओं को दान करेंगे उस सुख का।
इसी लक्ष्य से बचेंगे,
स्वयं इसके अधिकारी बनेंगे और दूसरों को भी अधिकारी बनाएंगे, क्योंकि सर्व संबंधों का सुख एक से, जिसका किसी में कोई लगाव नहीं, झुकाव नहीं, वहां पर माया आ नहीं सकती। तो सर्व संबंधों का सुख लो, बाबा ने बोला है, उनका दो भी, दान भी करो और लो भी बाबा से। ऐसे जो होंगे वो सदा न्यारे होंगे, वो सदा प्यारे होंगे। तो सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों के अनुभूतियों में एक की लगन में मगन, सर्व संबंध एक के साथ, वही सब कुछ है। बाप भी है तो टीचर भी है, तो गुरु भी है, भाई भी है तो चाचा भी है, तो मामा भी है,
फ्रेंड है, दोस्त है,
फ्रेंड है, दोस्त है, सखा है, मित्र है, आशिक माशूक है। उदास होते हो तो बाबा मनाते हैं, रोते हो तो बाबा आंसू पोछते हैं, रूठते हो तो मनाते हैं, उदास होते हो तो समझाते हैं कि जो बीता तो हो गया तो हो गया। मुरली चली थी ना, सर्व संबंधों का अनुभव एक से, सब कुछ वही है। पहला, दूसरा, दूसरा
माता जी
दूसरा गया
अभी पहला पक्का हुआ।
सदा चलती कला, सदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर, सदा आगे बढ़ रहे, पीछे देखेंगे नहीं क्या हुआ, सदा आगे चढ़ती उतरती कला नहीं, सदा चढ़ती कला। चक्कर में नहीं जाएंगे कलाओं के, कभी 14 तो कभी 8, ऐसा अंतर उनमें नहीं होगा। सूर्य की भी कलाएं होती है, रवि कला,
जब ग्रहण के लगता है तो ये भी कला कुछ तो होता है।
सदा एक स्थिति, सदा चढ़ती कला, सदा उन्नति, उन्नति अवनति नहीं, सदा उन्नति, सदा आगे अनुभव खुद को कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर की शक्तियां बढ़ रही है, सागर बनते जा रहे हैं। सागर और नदी भी बोला आगे बाबा ने, पार्टियों से मुलाकात, नदी सूख जाती है, सागर कभी सूखता नहीं, सागर में गहराई होती है, नदी में गहराई नहीं होती है। तो सागर बनना है या नदी, क्या बनना है? सागर, सागर के बच्चे, मास्टर सागर। और क्या अंतर है सागर और नदी में?
सागर में बहुत कुछ रहता है,
सागर में खजाना होता है, नदी में नहीं होता है। नदी हलचल है, चलायमान है, सागर स्थिर,
सागर तभी तो संभाल लेता है,
सब कुछ संभाल लेता है सागर, नदी नहीं संभाल सकती सब कुछ। नदी सूख जाती है, सागर कभी सूखता है कभी नहीं, सारी नदियां सागर में आ जाती है। तो सागर हमेशा शक्तिशाली होता है, शक्ति का प्रतीक है सागर। तो तुम मास्टर सागर बनना है, नदी नहीं बनना है। तो सदा चढ़ती कला, सबसे पहला सदा साथ और सर्व संबंधों की अनुभूति, दूसरा सदा चढ़ती कला, चढ़ती कला उतरती कला, इस चक्कर में नहीं
जाएंगे,
ये सब नहीं, इतना अंतर उनमें कभी नहीं पड़ेगा। तीसरा, तीसरा क्या अरविंद भाई, सूर्य समान एक रस, बादल सूर्य के सामने बादल आएंगे, परंतु बादल कौन, माया, माया रूपी बादल आएंगे और जाएंगे, बादल आएंगे और बादल छट जाएंगे। तो तीसरा, परिस्थिति आएंगी और जाएंगी, संबंध में खिटखिट होगा पर उसका भी असर नहीं पड़ेगा, आगे बोला है बाबा ने। संपन्न आत्माओं की निशानियां क्या क्या है, सदा संतुष्ट होंगे, किसी से तंग नहीं होंगे, सदा विजयी होंगे, सदा दाता होंगे, सदा सागर होंगे, नदी नहीं होगी, सदा हर्षित होंगे, सदा खुशी में नाचते रहेंगे, निश्चिंत होंगे, इसके लिए विजयी होंगे। तो संबंधों में खिटखिट, परंतु उसका असर उन पर नहीं होगा, किसी से तंग नहीं होंगे। तो बादल आएंगे और जाएंगे,
किसी से तंग नहीं होंगे, उससे को तंग हो जाए तो
वो अब किसी को दुख ना देंगे, ये भी तो उनकी क्वालिफिकेशन है। अगर जबरदस्ती कोई हो रहा है तो
कोई सुख लेने के बाद भी दुखी जाता है।
हाँ, तो बाबा ने छूट दिए वहाँ पर, पासपोर्ट में किसी ने प्रतिज्ञा करके रखी है कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो क्या कर सकते, किसी ने प्रतिज्ञा की है कि इसको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या कर सकते बोलो,
तो 5%
5% छूट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने तो बहुत सुख दिया पर उसने कभी स्वीकार नहीं किया, उसको लग रहा है हम दुखी दे रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने उसके लिए भी श्रीमत दिया, अगर किसी को तुम्हारे बारे में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसके व्यर्थ संकल्प तुम्हारी स्थिति को हिलाए नहीं, अगर हमारे वजह से हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी किसी को व्यर्थ संकल्प चल रहे है तो उसके व्यर्थ संकल्प तुम्हारी स्थिति को डिगाए नहीं, तुम अड़िग रहो। ये भी बाबा ने श्रीमत दे रखी है। तो बादल आएंगे और जाएंगे। चौथा, स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं अपने स्वरूप को सामने रखेंगे, इसके लिए बादलों के वजह से उनका स्वयं का प्रकाश कम नहीं होगा। और एक बात वहां जोड़ी है, बाप से गुण लेंगे और गुणों द्वारा प्रत्यक्ष होंगे,
बाप से गुणों से प्रत्यक्ष होंगे,
वो भी एक बात वहाँ
पर समझ में नहीं आई लाइन।
हाँ, वो लाइन बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, छोड़ दो दोस्तों, भाव ले लो भाव से ले लो, बाबा से गुण लो और प्रत्यक्ष हो बस,
लाइन छोड़ने की छूट है
जंप लगा दो,
एक ही लाइन है जो थोड़ी मुश्किल है आज की मुश्किल। चार, पांचवा, पांच बोलो, सेहत के
सेवादारी,
सेवादारी लाइट हाउस और माइट हाउस, माइट हाउस अर्थात इतनी उनमें अपने स्वयं में शक्ति का अनुभव होगा, हाउस माइट हाउस इतने वो शक्तिशाली होंगे, लाइट हाउस इतना उनमें प्रकाश होगा, इतना उनमें ज्ञान का भंडार होगा। हाँ वो भी होगा, तुमको लाइट हाउस बनकर सारे विश्व में लाइट फैलानी है। दो उदाहरण दिए, एक बीज का और एक लाइट का, लाइट हाउस का, जैसे बीज सारे वृक्ष को पानी देता है वैसे तुम्हारा, तुम्हारी लाइट, तुम्हारे लाइट सारे वृक्ष को जाए। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर बैठकर सारे विश्व को प्रकाशित करता है, सारे चारों ओर, चहु ओर, दसों दिशाओं में उसका प्रकाश फैलता है। और बल्ब, तो तुमको बल्ब नहीं बनना है, क्या बनना है, लाइट हाउस बनना है। हर संकल्प में क्या हो,
विश्व का कल्याण हो,
हर संकल्प में स्मृति हो कि विश्व का कल्याण हो, इतनी अच्छी लाइन है, हर संकल्प में स्मृति हो कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, तुम्हारे नस नस में ये समा जाए, हम हैं विश्व कल्याणकारी और आए किस लिए हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए। स्व का कल्याण तो है, स्व का परिवर्तन, स्व का कल्याण और विश्व का कल्याण दोनों करना है। स्व का परिवर्तन पहले, फिर विश्व का परिवर्तन, पहले स्व का परिवर्तन पूर्ण विराम, तो सबकी दुआएं, बाप की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलेगी, वरदान आज का। फुल स्टॉप, खुद का परिवर्तन, खुद का कल्याण, स्व कल्याण, तो स्वयं की दुआएं से खुश रहेंगे, ब्राह्मण परिवार की दुआएं और बाप की दुआएं, सब कुछ मिलेगा। तो बीजरूप स्थिति, लाइट हाउस, माइट हाउस, बेहद के सेवा धारी, क्योंकि बेहद की सेवा की अभी आवश्यकता है, बेहद बाप के बच्चे हो उसके लिए बेहद के सेवा की आवश्यकता है, तो बेहद के सेवाधारी। छठवा, फॉलो फादर वाली बात है, वो कर्म रूपी जो कदम है उस पर कदम रखना, कर्म और पुरुषार्थ को फॉलो करना। सातवा, उसी का एक्सटेंशन, उसी का एक्सटेंशन फॉलो फादर, फॉलो फादर में भी दो बातें, समर्पण की बात है, एक त्याग की बात है, मन बुद्धि से बाप के आगे समर्पण। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, सर्वंश त्यागी, सर्वस्व त्यागी, उसी के आधार से नंबर वन फरिश्ता और नंबर वन महाराज। तो सर्वस्व त्यागी की बहुत सूक्ष्म परिभाषा वहाँ पर दिए बाप ने, संस्कारों में भी वंश से, वंश भी ना हो, संस्कारों में भी विकारों का वंश भी ना हो, ये है त्याग। एग्जाम में बुक खोलना लोगे?
पकड़ के रह गई, 5% हो गया,
खोला माना 5% पूरा हुआ।
आजकल नकल करने के तरीके बदल गए हैं, लोग चिप डाल के जाते हैं अंदर में, सारी ऑपरेशन करा के,
इतना नहीं अभी पता। तो सातवा, फॉलो फादर में एक तो समर्पण भाव, और दूसरा कुछ साकार रूप से भी समर्पण, समर्पण और त्याग। त्याग भी कितना सूक्ष्म है, विकारों का त्याग, विकारों का त्याग। बाबा ने एक साकार मूर्ति में कहा था, बुद्धू किसको कहेंगे,
जो खुशी ना हो जिसको,
जो खुशी ना, नहीं बुद्धू नहीं, सॉरी सॉरी, ट्रेटर किसको कहेंगे,
जो
दिया हुआ वापस लेता है। तो खाली स्थूल है या सूक्ष्म भी बात है यहाँ पर, अगर सूक्ष्म है तो फिर सभी सभी ट्रेटर हुए। ट्रेटर अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं ट्रेटर को, देशद्रोही, विश्वासघाती, गद्दार, गद्दार कहते हैं, गद्दार,
विश्वासघाती, गद्दार,
ट्रेटर अर्थात जो बाप का इधर बनता है फिर जाकर माया का बनता है, इधर से निकलकर उधर चला जाता है। तो बाप का, बाप को कुछ दे दिया और फिर वापस ले लिया, तो यहाँ केवल स्थूल की बात नहीं है, जन्म होते ही तुमने बाबा को सब विकार दे दिए और फिर धीरे धीरे एक एक लेते हो, तो इसका मतलब हर एक
तो बाबा
गद्दार,
बाबा को मैंने दे दिए थे, बाबा देता क्यों,
बाबा ने नहीं दिए, तुमने दिए। ये केवल स्थूल की भी बात नहीं है, तू सेंटरों पे कुछ दे देते ना, नए नए ज्ञान में आते हैं तो बहुत सारा देते हैं, और फिर जब अनबन होती है तो फिर वापस,
एक्चुअली एक एक करके दिया ही नहीं है ठीक से,
क्या क्या एक एक करके,
मतलब भले बाबा ने कहा कि जब जैसे बाप के बने तो सब दे दिया,
दिया कहाँ है, वही तो प्रॉब्लम है,
तो दी नहीं है,
दिया है वो बाबा ने हमको दिया है, लिया नहीं है
बाबा ने, इसलिए दे दिया कि भाई दुनिया ऐसी है यहाँ काम आएगा,
क्योंकि विकार पर वो दृढ़ता,
वो
ठप्पा लगाना पड़ता है,
एक एक चीज गिना के देना वो तो नहीं,
दृढ़ संकल्प का ठप्पा, जैसे पोस्ट ऑफिस में जाता है ना, और फिर उधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठप्पा लगाना होता है, अमृत वेला ठप्पा लगाना होता है, दृढ़ संकल्प का। कहाँ थे? सर्वंत त्याग, त्याग की सूक्ष्म परिभाषा विकारों का वंश सहित संस्कारों में त्याग। सातवा, आठवा
कल्याण की जिम्मेवारी,
आठवा निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि है तो कल्प कल्प जन्म जन्मांतर निश्चित विजयी। निश्चय बुद्धि किस किस में निश्चय, चार छोड़कर बताओ,
ज्ञान में,
ज्ञान में निश्चय, चार तो मुख्य निश्चय है, स्वयं में, बाप में, ब्रह्म में, परिवार में, इसको छोड़कर ज्ञान में निश्चय, एक एक महावाक्य में निश्चय, एक एक अक्षर में निश्चय, एक निश्चय और निश्चय समय पर निश्चय, कौन सा समय चल रहा है, समय के कल्याणकारी स्वरूप में निश्चय, और किस में निश्चय,
विनाश,
विनाश में निश्चय। बाबा ने कहा है होगा, वो तो हो गया ना, स्वयं में, बाप में, ग्रामा में, परिवार में, ये चार। अभी आगे वाले और कौन से निश्चय,
पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ,
वो स्व में बहुत सारा आ जाएगा, उसमें अपने पुरुषार्थ आ जाएगा, अपनी विजय में निश्चय, स्वयं में निश्चय, अपने आप में निश्चय, अपनी सफलता में निश्चय,
अपने संकल्प,
अपने संकल्पों पर निश्चय,
अपने बोल पर निश्चय,
बोल पर निश्चय, कर्म में निश्चय, दूसरे के पार्ट में निश्चय, कि जो कुछ हो रहा है, दूसरा जो भी पार्ट बजा रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, इसके लिए उससे दुखी नहीं होना है, किसी
बीमारी में
स्वयं को तंग नहीं, बीमारी में हिसाब किताब चुप तो हो रहे, ये निश्चय, ऐसे नहीं बीमारी आ गई तो बस ये क्या हो गया पता नहीं, और भी कुछ निश्चय है,
निश्चय कभी निश्चय,
मधुबन में निश्चय, स्थान में निश्चय,
स्थिति,
कौन सा स्थान है ये निश्चय कि ये बाबा आया हुआ है इस तन में, ये निश्चय, जो आ रहा है नीचे वो कोई और नहीं है,
आवाज बदल जाती है,
उनकी आवाज बदले या कुछ हो वो वही है, ये निश्चय,
आवाज बदले तो भी नीचे जाइए भाई, बाजा खराब है,
जो कोई पुरुषार्थ नहीं करते,
अपने निश्चय की बात चल रही है,
जो कभी कोई पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी बाबा बहुत अच्छा बात कर रहा है उनके साथ, वो सीन देख कर भी निश्चय, कभी कभी बाप में भी निश्चय कम हो जाता है, कभी बाबा लंबे समय तक किसी से मिलते हैं तो लोगों के संकल्प चलते, बाबा क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्या सुधरने वाले क्यों इसको 15 मिनट दे रहे,
हर एक का अपना विचार सागर मंथन रहता है।
एक भाई बोला मैंने 15 साल है एक बार बाबा से दृष्टि नहीं लिया, ये सब बड़े बड़े मंत्री के पास जो आते हैं पुलिस जाते हैं बाबा से अपना लक्ष्य लेके चला जाता है,
क्या लेके चला जाता है,
एप्पल, एप्पल,
अरे अमृत वेले तो एप्पल ही एप्पल मिलते हैं वहाँ से लो ना, बाबा ने कहा विशेष समय है अमृत वेला सस्ता सीजन है वो, वहाँ तब नहीं लेते, वहाँ स्थूल लेने से कुछ नहीं होने वाला, तो निश्चय बुद्धि जो है वो विजयी है, अपनी विजय में निश्चय, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जिसने जो माया जीत है, जिसने हर बार माया को हराया, वो मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, बाबा के वरदानों में निश्चय, मुरली में निश्चय,
लोगन
में महावाक्य में सब कुछ आ गया,
हर पॉइंट आ गया,
हर कदम में निश्चय, ब्रह्मा के हर कदम में निश्चय, यज्ञ में निश्चय, ये यज्ञ के किले को मजबूत बनाने को कहेगा, इस दुर्ग को मजबूत बनाओ, अभेद्य अगम्य बना दो, ये है निश्चय। नौवा
विश्व कल्याण की जिम्मेवारी,
जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतना ही लाइट, डबल लाइट, उतना ही हल्कापन, ऐसा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो भारीपन आ जाए। भारी कौन बनाता है आत्मा को? कर्म भारी नहीं बनाता, सेवा भारी नहीं बनाती है, व्यर्थ संकल्प भारी बनाते हैं आत्मा को, चाहे कितनी भी सेवा हो, परंतु स्थिति अंदर से डबल लाइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम है ब्राह्मणों के पास, भूलना मत माता जी, ठीक है ना। अव्यक्त वाणी पढ़ने के लिए भी टाइम है, साकार मुरली पढ़ने के लिए भी टाइम है, आगे वाली अव्यक्त वाणियां पढ़ने के लिए भी टाइम है, संदेश पढ़ने के लिए भी टाइम है, ज्ञानामृत पढ़ने के लिए भी टाइम है, सब टाइम है।
भूलने के लिए टाइम नहीं है,
भूलने के लिए टाइम नहीं, सब करने के लिए टाइम है। परमानंद संजय भाई कि कम है टाइम ब्राह्मणों के पास,
3:30 बजे उठते हैं, कितना टाइम ही टाइम है।
तो करो, समय को सफल करो। नौवा, ये तो नौवा हो गया। दसवा, स्वयं के वृत्ति और वाइब्रेशन से क्या करो, दूसरों को स्वस्थ करो, स्वस्थिति में स्थित करो आत्मा, स्वस्थिति में स्थित करना, स्वयं की वृत्ति और वाइब्रेशन स्वस्थ करना, केवल शारीरिक रीति से नहीं, आध्यात्मिक रीति से स्वास्थ्य प्रदान करना। पहले स्वयं को स्वस्थिति में खुद स्थित करो, उसके बाद बाबा ने कहा ना, जो देही अभिमानी स्थिति में है वो कशिश करेंगे सबको। मुरली चली ना अभी परसों, जो देही अभिमानी है वो कशिश करेंगे सबको। गांव में जाकर सेवा करो, बोला ना, मंदिरों में जाकर सेवा करो। ये बाप थोड़ी जाएगा, बाप कहाँ जाएगा किचड़े में, बाबा को किचड़े में लेके जाओगे क्या? इस बाप के साथ तो, इस बाबा के साथ तो वो बाप है। 11वां, स्वयं के खजानों से क्या करो, केवल स्व के लिए नहीं,
स्वार्थ मन स्वार्थ नहीं,
महादानी वरदानी, दूसरों को दान देना। खुद के लिए जमा करने का समय अभी गया कि अभी भी लगे हुए, जुटे हुए, संगठित योग के लिए, उस दिन कहा ना बाबा ने अव्यक्त वाणी में, संगठित योग किस लिए है? आज भी है, पर वो पॉइंट दूसरा था। संगठित योग खुद का टूटा हुआ योग जोड़ने के लिए नहीं है, विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए। 12वां, निर्वाण की स्थिति में रहकर वाणी में आना, और कर्म और बोल में निर्माण, सोमान स्थिति में सोमान, कर्म और बोल में निर्माण। तो वाणी में निर्वाण की स्थिति में रहकर वाणी में आना,
दो बात,
अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में आना, अव्यक्त ज्यादा खींचे, व्यक्त में आने के लिए मेहनत करनी पड़े, वाणी में आने के लिए मेहनत करनी पड़े। अभी सोचना पड़े कि अभी वाणी में आना है, बोलना है अभी, और काम हो गया कि ऊपर, अभी अभी आए, बोला, काम किया और गायब। फरिश्ते ऐसे होते हैं ना, आया, काम किया, कोई ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं छोड़ा, किसने किया, क्या किया, कोई वर्णन नहीं उसके, कल्याण किया और अदृश्य। अगर वर्णन किया तो आधा खत्म, बाबा ने कह दिया है, सेवाएं की और कहा कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आधा खत्म, भारी हिसाब किताब है। फिर लास्ट निर्माण, निर्माण अर्थात कर्म और बोल में नम्रता, निर्माणता, नम्रता, सुशीलता, सरलता, तो ऐसे बनना है। निर्वाण, निर्माण में अहंकार से मुक्त अपना हो, एक है अहंकार से मुक्ति, निरहंकारिता, ये सब जुड़े हुए शब्द, घमंड, अहंकार, मैपन, मेरापन, अहम, रोग, ये सारे सारे उसका जैसे जैसे जुड़े हुए। इसके विरोध में नम्रता, ट्रस्टी भाव, तेरा, मेरा मेरा कहोगे तो क्या हो जाएगा, मैले हो जाएंगे। मेरा मेरा कहोगे तो क्या हो जाएगा?
बोझ।
तेरा तेरा कहोगे तो हल्के। फरिश्ता अर्थात जिसमें अंश मात्र भी मेरापन नहीं, वरदान था ना, फरिश्ता अर्थात जिसमें अंश मात्र भी मेरापन नहीं, सब कुछ तेरा। तो ये जो अहंकार है ये भी एक अध्यात्म का बहुत ऊंचा लक्ष्य है जिसको समाप्त करना। एक कहानी है तीन वैरागियों की, सुनिए, बहुत सुंदर कहानी। बर्नार्ड शॉ करके एक ऑथर है, उसके संस्मरण में ये कहानी है। तीन वैरागी होते हैं जो एकदम भोले होते हैं। किसी टापू पर वो तपस्या करते हैं। समुद्र के बीच में एक टापू होता है, उसमें वो लोग तपस्या करते रहते हैं। और ऐसी कथाएं होती है कि उनके पास जो भी जाता है चमत्कार घटित होते हैं वहां पर। और वो प्रार्थना क्या करते हैं? बहुत सिंपल प्रार्थना, हम तीन है तू एक है, हम पर दया कर। वी आर थ्री यू आर वन ब्लेस अस। हम तीन है तू एक है, भगवान को और हम पर दया कर। और इतनी प्रार्थना करते रहते हैं और कई लोगों को बहुत सारे साक्षात्कार चमत्कार होते। तो वहां का एक जो शहर का जो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होता है, पादरी जिसको कहते हैं, विदेश की कथा है, जो कि चर्च का बहुत बड़ा, उसको जब ये पता चलता है कि ये लोग धर्म के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग धर्म के अनुसार जो प्रार्थना की जाती है, जो शास्त्रों में लिखी है वो नहीं, इन्होंने अपनी एक प्रार्थना बनाई है और उस अनुसार ये साधना करते हैं, उस अनुसार ये प्रार्थना करते हैं जो कि धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए, इनको मैं जाकर सिखाऊंगा कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तो वो जाता है उनके पास नाव से और उनके साथ में कई दिन रहता है और उनको सिखाता है कि अरे मूर्खो, ये जो तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, ऐसी प्रार्थना थोड़ी की जाती है, इससे कभी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसी थोड़ी ना। फिर उनको वो शास्त्रों की प्रार्थनाएं सुनाता है, शास्त्रों में जिस प्रकार की प्रार्थना है, धर्म अनुष्ठान है, वो सब कुछ उनको सिखाता है कि ऐसा करो अभी आज से। तो वो भी बड़े भोले होते हैं, हाँ ठीक है ऐसा करेंगे, वो जो जो बोलता है वो स्वीकार करते हैं क्योंकि वो तो तपस्वी होते हैं, उनमें बहुत नम्रता होती है। और वो बहुत खुश हो जाता है ऐसे जब वो लोग अच्छे से सुनते हैं, और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इनका कितना कल्याण कर दिया, सन्मार्ग इनको बता दिया, भगवान की प्राप्ति का सच्चा मार्ग मैंने इनको बता दिया। तो फिर वो कुछ दिन रुक के जब जाने लगता है तो नाव से, तो जब थोड़ा देर जाता है समुद्र में, वो पीछे देखता है तीन ऐसे आकृतियां दौड़ के आ रही है पानी पर चलते हुए। वो तीन ही सन्यासी थे, वो वैरागी, वो तीनों भाग भाग के आ रहे पानी पर चलते हुए। और उनको कहते रुकिए रुकिए गुरु जी, आपने जो प्रार्थना सिखाई हम भूल गए, वापस सिखाओ। तो वो देखता है कि इनमें इतनी सिद्धियां, ये तो समुद्र पानी पर चल सकते हैं और मैं इनको सिखाने गया था, बोलता है जो पहले करते थे वही चलो।
क्योंकि वो भूल गया होगा अपनी
भूल गया होगा।
ये अहंकार जो आता है अध्यात्म का बहुत बड़ा शत्रु। ये जो तीन वैरागी थे, इतने सिद्ध पुरुष थे, उनमें इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त थी और वो भी भाग भाग के ये पूछने आते कि आपने जो सिखाया भूल गया, वापस सिखाओ। बोलता है कि जो पहले कर रहे थे वही चालू रखो। भोले वाले होते तुम, भोले वाले। हाँ, निश्चय बुद्धि से, चाहे कितनी भी कोई प्रार्थना करे, बाबा से जो प्रीत है वो बाबा किस पर राजी होता है? बुद्धिमानों पर थोड़ी राजी होता है। बाबा को कौन प्रिय है? जो भावना वाले हैं, जो भोले भाले है वो प्रिय है। गर्वर है ना,
रामकृष्ण परमहंस तो मंत्र सीखा नहीं था,
वो तो अनपढ़ थे,
खाना लेके काली माँ को खिलाते थे, जब तक नहीं खाते थे तब तक वो खाते नहीं थे।
तो भावना होती है ना, भगवान तो बंध जाता है भावना से।
कोई नहीं था, दो माताएं आई और बाबा के पैरों साइड में पैर दबाए, लगी हुई है दोनों, और इतनी भोली दिखने में वो एकदम पतली दोली दोनों।
ज्ञान और योग और ये सब जो है ना, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम जो है वो सर्वोपरि है। प्रेम
से ऊपर पिघलेगा भाई, उसके पांव तो आदि क्या करेगा बाबा।
उद्धव और गोपी, गोपियों और उद्धव में क्या अंतर है? उद्धव जो था वो परम ज्ञानी था, उद्धव की कहानी है ना, उद्धव
ज्ञानी।
और ये जो थे गोपियां, वो तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ जाकर गोपियों को ज्ञान सुना के आओ, उनको पता वो ऐसी विरह में तड़प रही है मेरे, तो उसको भी बड़ा नशा चढ़ता है कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ। उसमें नहीं, अहंकार नहीं होता है उसमें, वो बहुत ज्ञानी होता है। तो वो जैसे पहुंचता है यमुना तट पे तो उसको गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी होती है, पर वहां तो अग्नि होती है। गोपिया तो विरह में तड़प रही है ना कृष्ण के। तो जब जाके उनको सुनाता है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो परब्रह्म है, वो तो अवतार है, वो तो विश्व कल्याण के लिए आया हुआ है, वो यहाँ से गया थोड़ी ना है, वो तो कोई आप उसको मनुष्य क्यों मान रहे हो, वो तो अवतारी पुरुष है, वो तो नारायण है स्वयं। तो वो कहती है क्या, वो तो यहाँ खड़ा था, हमने उसके साथ यहाँ पर बांसुरी बजाई, हमने उसके साथ यहाँ राज किया। वो उनके साथ 6 महीना रुकता है उनको समझाने के लिए कि ये जो है ना ये ऐसा नहीं है तुम ये जो कर रहे हो ना। पर वो तो कृष्ण प्रेम में इतनी लवलीन रहती है कि वो जैसे सुनते नहीं है। तो आखिर में उद्धव साष्टांग दंडवत करके आता है उनको,
जो करते हैं वही करते रहो,
जो चल रहे हो वही चलने दो,
थोड़ा बहुत वो होता है तो दिखाते हैं।
इसके लिए तो कृष्ण उसको भेजता है, इसके अंदर अहंकार होता है ज्ञान का, तो वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि अहंकार प्रेम से ऊपर कुछ है नहीं। प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम, परमात्मा दुलार, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय स्नेह, कितनी मूल्य चली अव्यक्तवाणी इसके ऊपर, ये सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है ज्ञान और ये सब, पर वो प्राप्त करना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मंजिल है। तो बाबा ने कहा निर्वाण और निर्माण, तो ये है 12 निशानियां। चंद्रवंशियों में ये 50-50 कभी है कभी नहीं है, उद्विधर्ती का कभी चढ़ती का, अप डाउन होते हैं। गुजरात से क्या कहा बाबा ने, कौन सी धरती है सात्विक, पिछली बार भी कहा था उपजाऊ धरती, वरदान प्राप्त है इस धरती को, कौन सा सहज योगी, इसके लिए सहज योगी बनो और सहज योगी
बनाओ।
राइट बोला,
ऐसी कौन सी आत्माओं को निकालो, विशेष आत्माएं ज्ञान के हिसाब से नहीं, अखबार टीवी रेडियो की जिनके वजह से आवाज हो, तो ऐसी आवाज निकालो, ऐसी आत्माएं। ये बाप की क्या है, उम्मीद, ये बाबा की उम्मीद है। तो इस उम्मीद को प्रैक्टिकल में लाओ, क्या
रेडियो वाला तो रेडियो मधुबंते
रेडियो, अभी तो मधुबन का ही सुन लिया, ये तब की बातें थी 79 में बाबा ये कह रहे हैं, इन आत्माओं के द्वारा आवाज होगा। तो अभी सब हो गया है साकार में, जो कुछ बोला था ये बाप की उम्मीद है, इसको प्रैक्टिकल रूप दो, तो हो गया।
पूरे देश में भी तो सब
हो गया है,
एफएम के द्वारा सुनी,
मीडिया ये सब हो गया। पार्टी एक,
पहली पार्टी
बीज रूप स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, बीज रूप इस स्थिति, इस स्टेज के आगे बाकी सब स्टेज नंबर 1 है। तो बीज जैसे वृक्ष को पानी देता है,
पत्ते
पत्ते को पानी देता है, तो तुम भी लाइट का पानी दो सारे वृक्ष को, जैसे लाइट हाउस चारों ओर प्रकाश करता है, तो तुम भी प्रकाश करो। और बल्ब नहीं लाइट हाउस का,
बल्ब नहीं बना।
हर संकल्प में स्मृति हो,
विश्व का
कल्याण हो, बहुत अच्छा वाक्य है, निरंतर याद रहे कि मुझे विश्व कल्याण करना है। बाबा ने कहा आधी रात को अगर नींद खुले तो क्या करो, विश्व को प्रकाश करो,
नींद का नशा होता है
आधी रात को यदि नींद खुल जाए तो
बाबा ने इसलिए बोला है
तुरंत प्रकाश दे दो विश्व को और तुरंत हो जाओ।
नहीं, जिनको नींद नहीं आती होगी ना उनके लिए बाबा ने बोला है यही काम करो।
संसार में अनिद्रा के शिकार है कोई यात्रा, रात को दो दो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत सारी बहनें आती है ब्रह्मा कुमारी जिनको नींद नहीं आती है, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती, फिर 1-2 घंटा नींद आती है और दिन में भी नींद नहीं आती, ऐसी बहुत आती है। रोज ओपीडी में 1 या 2 पेशेंट ऐसे है कि जिनको नींद ही नहीं आती।
उसका रीजन क्या होता है,
कई कारण है उसके, मानसिक और कई सारे कारण होते हैं बचपन से लेके तो अब तक का, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसका संबंध बचपन की स्मृतियों के साथ है, पूर्व जन्मों की यादों के साथ है, बहुत सारे कारण। अनिद्रा तो ब्राह्मणों में, संसार में तो बहुत है पर ब्राह्मणों में भी है, नींद ज्यादा नींद वाले भी रहते हैं,
ब्राह्मण तो वही है जो पहले
दोनों ही खराब है,
वो भी उदासी का ही, उदासी की निशानी है, उदासी की दो निशानियां, अनिद्रा और अति निद्रा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं उदासी, उदासी का कारण भी एक ही है, पुरुषार्थ नहीं करना, असफलता। और दूसरा एक कारण है काम विकार। काम विकार को दबा दिया है ना ब्राह्मणों ने, उसका रूपांतरण ऊर्जा में नहीं किया है, दब गया है वो बाबा के महावाक्य केवल सुन सुनकर, चिंतन नहीं किया उसके ऊपर। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, केवल दबा दिया है उसको। जो वो काम की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सारा संसार काम के आधार पर चल रहा है, वो इतनी प्रचंड शक्ति है कि उसको जब तक आकाशगामी नहीं बनाओगे, उसका रूप धारण नहीं, चेंज नहीं करोगे, परिवर्तन नहीं करोगे, वो दुख का कारण बनेगी, चाहे बहन हो चाहे भाई, कोई भी हो। तो उसके उसके चिंतन से उसका रूप बदलना है, रूपांतरित करना है उसको, नहीं तो वो दबी हुई कभी भी बाहर निकलेगी, और ऐसी बाहर निकलेगी कि सुनामी की तरह, सब कुछ ज्ञान जो सब बाहर के लेके चली जाएगी। वो ऐसी एक ऊर्जा है, वो एक ऐसी शक्ति है कि यदि उसको दबाया जाए तो उसके विक्षिप्तता आती है उसके, इसके लिए उसको परिवर्तन करना ये परम कर्तव्य है ब्राह्मणों का, उसको स्टडी करना कहाँ है, कब आती है, क्या स्वरूप है उसका। केवल वो कोई सब सबसे आती है, वो प्रकंपन के रूप में आत्मा में सब कुछ पहुंच रहा है, आंखों से कुछ दिखा बहुत सुंदर है, वो प्रकंपन आत्मा तक पहुंचा, कानों से सुना बहुत मधुर है, वो प्रकंपन आत्मा तक पहुंचे। काम कहो या कामना कहो एक ही है, मुख से कुछ खाया बहुत स्वादिष्ट है, वो आत्मा तक पहुंचे। अगर किसी को कहे ब्राह्मण, कोई ऐसे नहीं कहेंगे ये बहुत सुंदर है, स्त्री या पुरुष, ये कहने में उनको मुश्किल है, परंतु ये जरूर कहते कि ये चित्र बहुत सुंदर है, ये मोर बहुत अच्छा है, ये दृश्य बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, पर इसमें और उसमें वो एक ही है,
बाकी
क्योंकि आत्मा तक प्रकंपन ही पहुंच रहे हर चीज के। ये भी पवित्रता का ही खंडन है यहाँ पर, परंतु केवल इतना बोलने से कतराते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं उसकी जगह। कोई ब्रह्मचारी ये कहे कि ये स्त्री बहुत सुंदर है तो ये उसके वो नहीं बोलेगा, परंतु ये जरूर बोलेगा ये दृश्य बहुत सुंदर है। कुछ भी अच्छा लगना उसकी विशेषता या जो भी है, कुछ भी अच्छा लगना ये आत्मा तक प्रकंपन के रूप में आता है और आत्मा को प्रभावित करता है। यहाँ पर ही आत्मा की यहाँ प्रकंपन पहुंचे, अच्छा लगना सबसे पहला है, फिर आसक्ति, फिर लगाओ, फिर झुकाओ, फिर आसक्ति, और आसक्ति के बाद काम। कब काम प्रवेश कर जाता है पता नहीं चलता है।
कब तो ये सब प्रोसेस है ना, आपने
वो इतनी फास्ट होती है कि पता ही नहीं चलता उसमें उसमें प्रवेश
कब किया, प्रवेश पता नहीं चल पाता।
इसके लिए जब आत्मा स्वयं की स्थिति में स्थित रहती है स्वरूप में, तो ये प्रकंपन आते ही कट हो जाते हैं,
जैसे वायरलेस सिस्टम।
इसके लिए काम की स्टडी करना, और काम एक प्रचंड ऊर्जा है तन शरीर में, इस शक्ति का जब पतन होता है तो ही तो मनुष्य से देवता, स्वर्ग और नर्क में क्या सीमा रेखा है, पवित्रता अपवित्रता बस, बाकी सब छोड़ दो, बाकी कुछ है ही नहीं, बस एक इधर पवित्रता इधर अपवित्रता, इधर जन्म योग से इधर जन्म विकार से, ये एक ही सीमा रेखा है इधर और उधर। ये शरीर में एक प्रचंड शक्ति है जिसकी एक बूंद से ये जो शक्ति है, ऊर्जा है, वीर्य है, इसकी एक बूंद से एक महात्मा गांधी पैदा हो सकता है, आइंस्टाइन पैदा हो सकता है। तो उस ऊर्जा का यदि पतन होता है तो उसमें शक्तियां नष्ट होती है, परंतु ये एक ऐसा आवेग है, ऐसा आवेग है कि वो आवेग के सामने ज्ञान योग धारणा सेवा सब एक क्षण में नष्ट हो जाता है, इतना, क्योंकि जन्म जन्म आत्मा ने उसे भोगा है, इसमें उसमें इतना जबरदस्त आकर्षण है और वो छिपा हुआ है, दबा हुआ है, इसके लिए ऊपर से कुछ नहीं दिखता है। जो भी यज्ञ से बाहर गए हैं उसका कारण क्या था? एक ही कारण है, अपवित्रता। ऊपर से कुछ भी दिख रहा है, ऊपर से झगड़ा दिख रहा है, ऊपर से कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, पर अंदर कारण एक ही है, काम। तुम्हारा एक ही शत्रु है, मूल शत्रु। चलो, पार्टियों से मुलाकात। तो बीज रूप स्थिति है कि जो काम विकार में एक क्षण के लिए, काम विकार भी क्यों, वो देह का भी आकर्षण नहीं है केवल, उस देह के आकर्षण के पीछे भी कुछ सूक्ष्म है। क्यों सारा संसार उसके पीछे? क्या केवल शरीर के लिए? ना, इतना आसान नहीं है। उसमें भी अशरीरीपन का अनुभव है, उसमें भी इगोलेस स्टेट का अनुभव है, उसमें भी समयातीत स्थिति का अनुभव होता है एक क्षण के लिए। पर इसके लिए सारा संसार, सारी राजाओं ने राजाई खो दी उसके लिए। क्यों? क्यों सोचने की बात है? क्यों? क्योंकि उसमें भी अशरीरीपन का अनुभव है, परंतु एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और होते ही शक्ति का पतन। परंतु वो पतन होने के बाद पश्चाताप, और पश्चाताप के कुछ दिनों के बाद वापस वही आतुरता, वापस वही भोग भोगने की इच्छा। तो वो जो वहां प्राप्त होता है, वही अवस्था बीज रूप स्थिति में प्राप्त होती है, परंतु लंबे समय के लिए। क्योंकि आत्मा, एक योगी, एक तपस्वी, एक महान आत्मा अपना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा उस एक इच्छा के लिए दाव पर लगाने के लिए राजी हो जाता, तो जरूर उसमें कुछ तो होगा। कि ऐसे ही होता है, क्यों उसको इच्छा है ये करूं, वो करूं, वो करूं। जो अपना तपस्या दाव पे लगा देता है उस एक क्षण में सुख की अनुभूति करने के लिए, तो जरूर उसमें कुछ तो है। वो कुछ है अशरीरीपन, वो कुछ है। जैसे ही इस देह से वीर्य शक्ति बाहर जाती है, तुरंत सुख का अनुभव होता है, चाहे स्त्री या पुरुष। और वही एक क्षण मात्र के लिए ये सारा प्रोसेस है, चाहे वो शादी कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ कर रहे, वो एक क्षण के अनुभव के लिए। तो वही एक क्षण का अनुभव अशरीरीपन में भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यहाँ जो प्राप्त होगा ना, वो लंबे समय के लिए होगा। वहां पे शक्ति का अपव्यय होता है, यहाँ शक्ति संचित होती है, यहाँ अंदर आत्मा में पावर भर जाती है, वहां आत्मा दुखी हो जाती है तुरंत, करने के तुरंत बाद उसको दुख का आभास होता है, फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे तुरंत शक्ति का अनुभव होता है, यहाँ आत्मा हीरा बनती है, वहां राख बनती है। तो बीज रूप स्थिति का बहुत महत्व है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सूर्यवंशी बनी वंश में आने वाली आत्मा बीज रूप और परिष्ठा स्टेज में रहेगी। योग में ज्यादा से ज्यादा समय बीज रूप स्थिति में स्थित होकर अशरीरीपन का अनुभव करना। तो पूर्व में भोगे हुए भोग प्रसंग की जो स्मृतियां है जन्म जन्म की, वो भी डिलीट होती जाएगी, क्योंकि वो आत्मा में है और वही उसको खींचती रहती है। सारा जीवन ब्राह्मण बनने से अंत तक वो भोग ही उसको अंदर ही अंदर खींचता रहता है, चाहे वो फिर वो टीवी देखेगा, सीरियल देखेगा, कुछ देखेगा, कुछ देखेगा, कुछ पढ़ेगा, या किसी के ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। इसलिए वो सब, वो इसी बात के लिए तृप्त करना चाहता है अपनी काम इच्छा को, काम लिप्सा को तृप्त करना चाहता है आत्मा। किस तरह से? बात कर देख कर,
सेवा
के नाम से, फैमिलिटी के नाम से। ये सारे ऊपर के रूप है, पर अंदर में एक ही वासना है, काम तृप्ति। इसी को जीतना है, इसी का रूप चेंज करना है। इसको दबाओगे वो एक प्रचंड सुनामी का रूप धारण करके वापस आएगा। नदी को रोका नहीं जा सकता है, नदी को रोकने का प्रयत्न मत करना, प्रचंड रूप धारण करके बाहर जाएगी, सारे गांव सबको बहा देगी। उसका उसको दिशा मोड़ दो, वो सीधा आराम से समुद्र में जाके विलीन हो जाए। दूसरा पैराग्राफ, संपन्न आत्माओं की निशानियां बोल दिया हमने, सारा बोल दिया। तीसरा, बाप है वर्ल्ड सर्वेंट, तो बाप को सेवाधारी बच्चे पसंद है। क्यों? क्योंकि बाप स्वयं वर्ल्ड सर्वेंट है, तो वर्ल्ड सर्वेंट, तो तुम बच्चों को भी सर्वेंट को क्या याद रहते हैं?
मास्टर,
मास्टर और सेवा। एक बाप के रस के सिवाय बाकी सब नीरस बेस्वाद।
ठीक है
बेमजा। ये हो रहा है
भैया,
मजा ये हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर ये हो गया ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि उसी में सर्व रस अनुभव होना, उसमें नहीं हो रहे सब जगह बुद्धि जा रही है, ये भी करूं वो भी करूं ये भी करूं ऐसा भी करूं, तो एक रस सब रस एक में अनुभव होना और बाकी सब नीरस। ये नहीं है आत्मा को रस है सब में, इंद्रियों के सुखों में रस है,
हर चीज में रस
है, देखने में रस है, सुनने में रस है, बोलने में रस है,
खाने
में सबसे ज्यादा रस है आलू बाबा ने कहा है एक अभ्यक्त 91 की अभ्यक्त वाणी की बाप बंधा हुआ है बच्चों को दाल रोटी देने के लिए, परंतु बाबा एक बात भूल रहा है, बच्चों की आत्मा के अंतरतम में केवल इससे संतुष्टता नहीं है, उन्हें और भी कुछ चाहिए, उन्हें पापड़ भी चाहिए, उन्हें पुलाव भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, आलू परोठा चाहिए। बाप कहता है मैं बंधा हुआ दाल रोटी देने के लिए, पर बच्चे कहते हैं बाबा तो अभी सिर्फ फुर्सत चाहिए। आपको क्या लगता है अंत में सूखी रोटी मिलेंगी तो अप्राप्ति में प्राप्ति का अनुभव तुरंत हो जाएगा?
ये अप्राप्ति अप्राप्ति में प्राप्ति,
उसका भी अभ्यास चाहिए। बिस्तर कौन सा होगा? बिस्तर नहीं मिलेगा, तकिया नहीं मिलेगी, हाथों को तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर बिस्तर होगा, सूटकेस विदेशियों को भी बोला है सूटकेस बनाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं में सब कुछ का अनुभव, सूखी रोटी में नरम रोटी का अनुभव, ये अभी से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं तो नहीं होगा।
घी की तरफ पानी लगा दिया कल घी की जगह।
तो ये इंद्रियों के रस आत्मा को खींचते हैं तो उसमें नीरस अनुभव हो, बाबा कह रही है, और एक बाप में सब रस अनुभव हो, बहुत बड़ी स्टेज है। भोग तो इतना है कि योग छोड़कर पता चल गया आज किचन में वो है तो
10 मिनट पहले उठ जाएगी
10 मिनट पहले पता नहीं खत्म तो नहीं हो जाए
लेके रह लेंगे रात
को और थोड़ा दूसरे दिन के लिए थोड़ा लेके रखना खत्म ना हो तो बेहद की सेवा धरी, बेहद की सेवा स्वयं का परिवर्तन कर। चौथा
निर्मोही
सर्व संबंध एक बाप से, खुद बाप का बनना, निर्मोही बनना,
खुद बनना,
सर्व सुख लेना, अमृत वेला सुख लेना, दूसरों को सुख देना।
क्या सबको टेबलेट मारनी है दोनों उठ गए
फिर टीचर से मुलाकात, क्या बोला टीचर?
टीचर टीचर
जो स्नेही आत्मा है उन्हें बाप भी स्नेह का रिटर्न कब देते हैं?
अमृत
वेले। क्यों देते हैं अमृत वेले? क्योंकि अमृत वेला
सीजन
है, कोई कोई सीजन में सस्ता मिलता है, ये भी सीजन जिसमें बाबा सब कुछ दे देता है। सुबह
सब्जी मंडी लगी पड़ी है
नहीं वो क्या है इंटरनेट का कनेक्शन जो होता है ना दिन भर कितना ना देता है, कितने लोग ऑनलाइन रहते हैं दिन भर, सुबह सोए रहते हैं, वहां पे जब कनेक्शन लगाओ तो फास्ट होता है इंटरनेट, थोड़ा स्लो सोए रहते हैं ना, सुबह लगाओ तो थोड़ा स्लो होता है ब्रॉडबैंड। तो दिन भर सारे भक्त पुकार रहे हैं बाप को, धन दे दो, पैसा दे दो, समस्या दे दो, कोर्ट केस ठीक कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, इसका वो कर दो, भक्त भक्त गा रहे, गुणगान कर रहे, कीर्तन कर रहे, प्रवचन कर रहे, पुकार रहे, कोई कोई तो गला काटने को भी तैयार है, बाबा इज बिजी और सुबह थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा कम काम,
इसलिए गिन भी नहीं सकते किस किस तरह से क्या क्या करते हैं,
वो कुछ करता नहीं है, आपका ही हो सब होता है ऑटोमेटिक होता है
नहीं भगवान के लिए जो
हाँ भगवान के लिए कह रहा हूँ
जो करते हैं
अच्छा भगवान के लिए आत्मा है,
आत्मा जो करती है कितनी
भिन्नता है, बहुत भिन्नता, ये ड्रामा ही विविधतापूर्ण है विविधतापूर्ण ड्रामा है, मल्टीफैसेटेड। और क्या बोला टीचर्स, योग का किला निर्विघ्न होना,
योग भक्ति संगठित
निर्विघ्न करो यज्ञ, इस गढ़ को निर्विघ्न बनाना, इस दुर्ग को निर्विघ्न बनाना, अभेद्य बनाना, एक ही समय पर संगठित रूप से एक ही साथ। ये इंटरनेशनल योग शायद तब रूटीन में नहीं होता होगा, तब कोई विघ्न आता तो तब होता था।
विघ्न क्यों बोला ने?
कब एग्जैक्ट चालू हुआ उसकी कोई तिथि तारीख नागरिक में?
78।
पहले तो दादियाँ कहीं जाते थे तो तब उनके लिए योग किया जाता था, या कुछ हो रहा है प्रोग्राम तो योग किया जाता है।
अभी तो रूटीन,
नाम शब्द कुछ नहीं था।
नहीं अमृत वेले जल्दी नहीं उठते थे पहले,
4:30 5 ऐसे 5 बजे उठते हैं।
अमृत वेला तो चंद्रिका दिन में है ना, महादेव नगर उन्होंने तो बता रहे थे
हम लोगों के लिए अच्छी सुविधा बना
दी। तो अंतरराष्ट्रीय योग एक ही समय पर योग का किला बाबा ने कहा
मजबूत
कर। एक पॉइंट और रह गई है, ये जो एक रस वाली है ना, बाबा ने कहा यही मंजिल है और यही पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ से मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, तीव्र पुरुषार्थ।
हाँ वो भी पुरुषार्थ से नहीं पहुंचेंगे, तीव्र पुरुषार्थ। और ये जो है एक रस, एक सब रस उसमें अनुभव करने का, यही मार्ग और यही गंतव्य, यही मार्ग और यही मंजिल। तो एक रस उसमें, सब रस उसमें अनुभव, बाकी सब निरस लगे। कितना भी अच्छा बनने दो भोजन, तो संजय भाई क्या सोच के खाओगे? एक मिनट
थोड़ा जाके छौंक
मारता हूँ। ये संबंध में भी कहा है ना, मित्र जो है ना, कोई भी साकार कर्म करने से पहले कोई व्यक्ति याद नहीं है, साथी याद नहीं, बाप मित्र भी तो है, दोस्त है, मित्र है, सखा है तुम्हारा, फ्रेंड है।
वो तो एकदम लवली
सारे दुनिया के रस नीरस
नीरस
बाबा ने भोजन भवन नींद का नशा होता है, ऐसा नशा वो उदाहरण दिया
था। आंखें जैसे बंद हो अधखुली,
वो इतनी नशे में।
मीरा का एक भजन भी है, भोजन भवन भलो नहीं लागे, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता।
भोजन भवन,
भोजन और भवन जहाँ वो रहती है, राजमहल राजपाट, कुछ सब नीरस लगता है। ये साधु की अवस्था है उसकी, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये जो भी कुछ है संसार में, असार लगे संसार, नीरस लगे। अभी तुरंत
जब तक परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जम के आनी चाहिए तो आएगी अवस्था।
तो ये था वरदान, पार्टी ऑफ टीचर से मुलाकात। वरदान, वरदान में दो ही बातें, खुद का स्वयं आत्मा, बाप आत्मा और स्वयं को परिवर्तन, तो सबकी दुआएं मिल जाएगी। स्लोगन
ठप्पा करते हो दृढ़ता
का, इतने सारे पॉइंट है अच्छी मुरली में,
तो विजय हो जाएगी,
विजयी सूर्य वंश में।
पॉइंट है सब ढेर सारे,
एक एक पॉइंट का स्वरूप बनो। ज्ञान अर्थात बाबा ने परिभाषा दी है, ज्ञान मतलब केवल सुनना, सुनाना, समझना, समझाना नहीं, समझाना भी नहीं और समझना भी नहीं, केवल इतना भी ज्ञान नहीं, केवल हर एक महावाक्य का स्वरूप बनना, हर एक अक्षर का स्वरूप बनना, हर एक बाबा के महावाक्य का स्वरूप बनना, हर एक शब्द का स्वरूप बनना, ये है ज्ञान।
शब्द
खेल तो वो है स्मृति और विस्मृति का,
ऐसे बोले वाले
नहीं बाबू। नहीं ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्टडी करनी होती है, वो एक दूसरी बात है, भावना वाली बात है, माता वाली बात, ये आप कारण नहीं दे सकते हो स्वयं के, ये स्टडी है। बाबा ने कहा तुमको डीप स्टडी करनी है,
माता बनने नहीं
आए। हाँ यहाँ ये बात, माताओं का उदाहरण मत देना, बहुत भावना वाली होती है,
माता है माता है,
माता है माता है। बाबा ने ये कहा उच्च पद वो पाएंगे जो स्टडी अच्छी करेंगे, भावना वालों को नहीं बोला है, भावुक बन के नहीं बैठना है, केवल
ज्ञान युक्त भावना,
ज्ञान युक्त भावना, पूर्ण ज्ञान
योग,
पूर्ण भावना। तो तुम्हारे पास एक मुरली है ना 24 घंटे के लिए, उसका अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, चर्चा करो, सब कुछ करो,
अध्ययन करो,
स्टडी जैसे करते हैं ना स्टूडेंट, कैसे करते हैं दिन रात लगे रहते, नोट्स निकालते हैं, क्या क्या करते हैं
बाथरूम में भी, किसकी आंखें फिर
तो वो कर रहे होंगे कि नहीं, तो करो, उन्होंने किया अभी आप करो। कल से चालू कर देना,
बोल गया ना,
और उसमें रस होना चाहिए ना,
आज रात मात्र भी नींद नहीं आएगी, आज चालू कर देंगे।
रस होना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होता है वो। एक भाई कहता था मुझे तो 5 बार मुरली पढ़ता हूँ रोज, अभी भी है। अच्छा क्या था?
बेचारा कर तो रहा ही है ना,
वो तो बोल ही रहे, वो कर रहा है, वो तो कर ही रहे, तीव्र पुरुषार्थ की है सब। परंतु उसको समझना है, उसकी गहराई में जाना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है ना। स्वरूप और संकल्प बाबा ने कहा क्या है, ये नहीं तो फिर चंद्रवंश है। स्वर्ग में तो आएंगे, उसमें तो आएंगे, पर चंद्रवंश है, जाना है सूर्यवंश में। स्वरूप और संकल्प और स्वरूप एक हो, जो बोला है उसको अंदर समान।
मुरली 5 बार नहीं पढ़नी, 5 लाइन ही पढ़ लो, बहुत है।
एक ही लाइन को समझ लो और धारण करो, वो भी बहुत है। पूरा के पूरा याद रखना नहीं है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। जैसे उस दिन मुरली में था, जो देही अभिमानी अवस्था में है वो कशिश करेंगे आत्माओं को। कितना सुंदर महावाक्य है बाबा का।
इसीलिए एक मुरली बाबा ने कहा ना, अगर एक मुरली भी धारण कर लो तो संपन्न
हो। हाँ, चाणक्य का महावाक्य कि शास्त्रों के किसी एक श्लोक को समझ लो। अच्छा, एक श्लोक नहीं समझ में आता है, आधा श्लोक समझ लो। अच्छा, आधा नहीं समझ में आता है, आधा के आधा समझ लो। अच्छा, आधा के आधा समझ में नहीं आता, एक अक्षर को ही धारण करो, उतना ही काफी है। एक ही शब्द ले लो, लिखने का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा रोज एक पेज लिखना। जैसे मुरली में वाक्य है समर्पण, लिखो समर्पण से पॉइंट्स लिखना, 1, 2, 3, 4। थियरी नहीं लिखना, ऐसे वो मुश्किल है। पॉइंट्स कर्मयोग शब्द आया, कर्मयोगी मैं कैसे बनू, 1, 2, 3, 4, 5। व्यर्थ संकल्प आया, मेरे क्या क्या व्यर्थ संकल्प है, 1, 2, 3, 4, 5। मुरली में आया सदा बाप को साथ रखो, कैसे साथ रखो, 1, 2, 3, 4, 5। सर्व संबंध बाप के साथ, 1, 2, 3, 4, 5। माया आती है जाती है बादल की तरह, कौन सी माया मेरे पास आती है और जाती है, 1, 2, 3, 4, 5। निश्चय बुद्धि, किस किस के निश्चय बुद्धि, 1, 2, 3, 4, 5। लिखना, बोलना और पढ़ना, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्टडी में ये 3 चीजें होती है संजय भाई, ये तीनों चीजें होती रहनी चाहिए साथ साथ, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग। ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा से। ज्ञान की चर्चा करना, कोई मिले तो उससे ज्ञान की चर्चा करना या संगठित करना। अरे बोलो मत, स्वयं निकाल के उदाहरण बन जाओ। क्यों ऐसे बहकी बहकी ज्ञान की बातें कर रहे हो ऐसे?
क्यों मेरे दिल को दुखा रहे?
तो तीनों अभ्यास चालू करना, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग। दिस 3 कॉन्स्टिट्यूट स्टडी, इसी को ही अध्ययन।
फिर बड़ी
श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्रों में 3 बातें, श्रवण सुनना मनन करना, निधिध्यासन मनन उसको स्वरूप में लाना। सभी शास्त्रों में उपनिषदों में लिखे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 चीज, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। और बाबा ने भी कहा है लिखो सुबह सुबह अमृत वेला, मुरलियों में आता है साकार में। और फिर चेक करो, फिर जो बोला उसके बाद में चेक करो क्या क्या छूट गया। चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ और उसकी महिमा गाओ चित्रों की। सतयुग के चित्रों के सामने जाओ और देखो उसमें क्या क्या, और उसका वर्णन करो कि इसमें ये है वो है ऐसा है वैसा है, खाली वर्णन करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाओ और वर्णन करो कि ये क्या क्या है, इसमें ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है।
लक्ष्मी वर्णन, आप बहुत अच्छी हो, आपने कितने सुंदर,
हाँ कुछ भी बोलो। जैसे वो वैरागी बोलते थे 3, कुछ भी बोलो, पर मन में वाक्य रचना करनी है थोड़ी बहुत, अच्छे अच्छे वाक्यों की रचना, अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना, स्थापना और विनाश। तो ये रचना करनी है, स्थापना करनी है, और फिर उनकी पालना भी करनी है। अच्छा, ओम शांति। एक नया गीत आया है अस्मिता बहन का, सुना।